शांति, ओम शांति। आज रविवार की सुमंगल संध्या, जो ग्लोबल समिट का प्लेनरी सेशन फिफ्थ है, होलिस्टिक हीलिंग मर्जिंग स्पिरिचुअलिटी विद पब्लिक हेल्थ, इस सेशन के माननीय स्पीकर्स से अनुरोध करती हूँ कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर सतीश गुप्ता, डॉक्टर श्री वैद्य मुरलीधर, डॉक्टर पुण्य प्रसाद रेग्मी, डॉक्टर वैमुरी कृष्णा, राजयोगिनी बी के आशाबेन, डॉक्टर गीता बोरा, श्री अभिषेक उपाध्याय, श्री संत प्रसाद राय, श्री डीएन प्रसाद गुरु, राजयोगिनी बी के हेमलता, डॉक्टर इतिकॉन वेटना, प्रोफेसर के एस रंगप्पा, भ्राता बी के नथमल, राजयोगिनी बी के चंद्रिका, डॉक्टर बी के बनारसी साहा से अनुरोध है कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सेशन का शुभारंभ हम ईश्वरीय स्मृति से करेंगे।
परम पिता को याद किए जा, परम पिता को याद किए जा, मुश्किल को आसान किए जा, प्यारे पिता को तू याद किए जा, प्यारे पिता को तू याद किए जा, जीवन चमन आबाद किए जा, परम पिता को याद किए जा, मुश्किल को आसान किए जा। जीता है वो बेफिकर है, दुआ के बिना हर दवा बेअसर है, दुआओं से जीता है वो बेफिकर है, दुआ के बिना हर दवा बेअसर है, सेवा से सबकी दुआएं लिए जा, सेवा से सबकी दुआएं लिए जा, जीवन चमन आबाद किए जा, परम पिता को याद किए जा, याद किए जा, याद किए जा।
ओम शांति। सर्वप्रथम बहनों से अनुरोध करती हूँ मंच पर आसीन, हमारे माननीय अतिथियों का बैजेस एवं पुष्पों के द्वारा अभिवादन करें।
Thank you.
ओम शांति। इस सत्र का शुभारंभ भारतीय संस्कृति अतिथि देवो भव पुष्पों से बैजेस से अभिनंदन के पश्चात मधुरता से भरपूर वाणी के द्वारा आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता डायरेक्टर ट्रोमा सेंटर आबू रोड कार्डियोलॉजिस्ट, जैसा कि आज का विषय ही है सार्वजनिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक उपचार के लिए आध्यात्मिकता अथवा आध्यात्मिकता द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य का उपचार किस प्रकार किया जाए, आप उसके एक प्रैक्टिकल मिसाल है। आपने 11,000 हार्ट पेशेंट्स को इस स्पिरिचुअलिटी के द्वारा चेंज ऑफ लाइफस्टाइल के द्वारा उनको क्योर किया है। ये एक बहुत बड़ी सिद्धि है। अनुरोध करती हूं आप सभी का अभिवादन करें।
ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी परिवार के आसमान में कुछ चमकते हुए सितारे, जैसे कि हमारी आदरणीय श्रद्धेय राजयोगिनी आशा दीदी जी, श्रद्धेय चंद्रिका दीदी जी, श्रद्धेय हमारी हेमलता दीदी जी और आज की मंच पर विराजमान डॉक्टर श्री विद्या मुरलीधर जी, डॉक्टर पुण्य प्रसाद रेग्मी जी, डॉक्टर वेमुरी कृष्णा जी, डॉक्टर गीता वोरा जी, श्री अभिषेक अभिषद आ रहे हैं उपाध्याय जी, श्री संत प्रसाद राय जी, श्री डीएन प्रसाद गुरु जी, डॉक्टर इटिकॉन बटाना जी, प्रोफेसर के एफ संगप्पा जी, बी के नथमल भाई जी और हमारी श्रद्धेय शादा दीदी जी, आप सभी का आज के मंच में बहुत बहुत स्वागत है हमारी दादियों की तरफ से और पूरे ब्राह्मण परिवार की तरफ से। और आप सभा में उपस्थित, आपके बगैर तो ये सभा आज का जो प्रोग्राम है, जैसे आदरणीय दीदी ने बताया कि आधुनिक चिकित्सा में आध्यात्मिकता का समन्वय हम करें। और मुझे याद है जब मैं दिल्ली के एक बड़े हार्ट हॉस्पिटल में काम कर रहा था, तो आज के विषय जब मुझे ये बातें महसूस होती थी कि हम लोगों की बाईपास एंजियोप्लास्टी करके भेजते थे और वापस 3 महीने में 6 महीने में 1 साल में उनकी वापस स्टेंट बंद हो जाते थे या दोबारा से हार्ट अटैक आता था, तो तब ये प्रोग्राम मैं कहीं भाषण दिया कहीं पर IMA की मीटिंग में, और तब डॉक्टर कलाम के एक साइंटिस्ट थे DRDO के, उन्होंने ये भाषण सुना, तो तब डॉक्टर कलाम से उन्होंने शेयर किया और डॉक्टर कलाम साहब ने मुझे बुलाया और उन्होंने सुना कि क्या आप हार्ट की बीमारी बिना ऑपरेशन के भी ठीक हो सकती है, क्या हम ब्लॉक्स को खोल सकते हैं। तो तब ये रिसर्च प्रोग्राम बनाया गया और उसको करने के लिए मैं April 1995 में माउंट आबू यहाँ पर ग्लोबल हॉस्पिटल में मैंने ज्वाइन किया। शुरू में सिर्फ 5 साल के लिए मैं प्लान किया था, 5 साल ही मैं माउंट आबू रहूंगा और उसके बाद वापस दिल्ली चला जाऊंगा, किंतु वो दिन April 1995 और आज हो गया October 2024, मतलब 29 साल से अधिक समय हो गया, तब से मैं यहीं रह गया। क्योंकि यहाँ का वायुमंडल और यहाँ के मैंने लगभग 181 ग्रुप्स हमने किए, लगभग जो एंजियोग्राफी डॉक्यूमेंटेड हार्ट पेशेंट्स होते हैं, और उनको हमने लिया, उनको हाइपरटेंशन भी था, डायबिटीज भी थी और बहुत सारी बीमारियां थी। मैं ये प्रोग्राम को इसको मैं शुरुआत कर रहा हूं इस टॉपिक को कि कैसे हम मेडिटेशन के द्वारा, राजयोग मेडिटेशन और प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर नींद और डिएडिक्शन के द्वारा हम कैसे जो 100% कैल्सिफाइड ब्लॉक्स हैं उनको भी खोल सकते हैं। हमने दिखाया है कि जितना जितना पेशेंट एक्यूरेटली फॉलो करते हैं, नया जीवन शैली को फॉलो करते हैं, जो हमारे अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक है, अंदर घड़ी है एक अंदर जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, उस लाइफस्टाइल को हम फॉलो करें, उसी समय सोने का समय उठने का समय उस क्लॉक में है, हमारे हार्मोनल साइकिल है वो, उसको अगर फॉलो करते हैं तो हमारे सारी की सारी बीमारियां, ना खाली हार्ट के ब्लॉक्स खुलते हैं बल्कि डायबिटीज ठीक हो जाती है। जिन लोगों का HbA1c 11 12 13 होता था, शुगर 400-500 रहती थी, आज बिना इंसुलिन के बिना गोलियों के उनकी डायबिटीज ठीक हो गई। जिनका वेट 102-105-120 किलो था, आज वो 70-80 किलो के हो गए। जिनका ब्लड प्रेशर था, ब्लड प्रेशर की दवाएं कम हो गई या ठीक हो गई। जिनका एस्थमा ठीक हो गया, प्रोस्टेट कैंसर ठीक हो गया। एक्चुअली यू कैन रिवर्स ईच एंड एवरी डिजीज ऑफ माइंड एंड बॉडी विद द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअलिटी। सो वी हैव टू इंटेग्रेट स्पिरिचुअलिटी इन मॉडर्न हेल्थ केयर, दैट इज वॉट इज द नीड ऑफ द आवर। तो मैं इस प्रोग्राम को आज इस प्रोग्राम की शुरुआत में मैं सभी अपने वक्ताओं से और इस बात को मैं चाहूंगा कि इस बात को हम फोकस करें आज इस समाज में, इस ग्लोबल समिट के द्वारा, कि सचमुच आज अगर कोई एडवांसमेंट है मेडिकल साइंस में, मॉडर्न हेल्थ केयर में, वो है वी हैव टू इंटेग्रेट स्पिरिचुअलिटी इन मॉडर्न हेल्थ केयर। और इसका एविडेंस जो थ्री डायमेंशनल हेल्थ केयर, आज की मॉडर्न हेल्थ केयर वन डायमेंशनल है, सिर्फ बॉडी की केयर है, इसमें हमें स्पिरिचुअलिटी और माइंड की नॉलेज को भी ऐड करना होगा। जब हम अपने को आत्मा समझ के परमात्मा की याद में रह करके अपनी टीम, अपने विचारों को, भावनाओं को पॉजिटिव करते हैं, तो साथ साथ शुद्ध सात्विक भोजन, शुद्ध सात्विक सैर, शुद्ध सात्विक नींद और प्रॉपर दवाई अगर हम लेते रहें तो धीरे धीरे हमारे मन और तन की सभी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, जिसको हमने प्रूव करके बताया और इसको हमने पब्लिश भी किया है इंटरनेशनल जर्नल में, और आज सारा विश्व इसको मानता है। एक बार दोबारा मैं आप सभी का, मंच पर उपस्थित हमारे सभी वक्ताओं का और सभा में उपस्थित आप सभी आदरणीय भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सतीश गुप्ता। शब्दों के द्वारा स्वागत के पश्चात भारतीय नृत्य कला को और उस द्वारा अभिनंदन कर रहे हैं डॉक्टर श्री वैद्य मुरलीधर, सौरभा संगीता नृत्य कला परिषद मैंगलोर के। बहुत सुंदर स्वागत नृत्य आप सभी के समक्ष आ रहा है डॉक्टर श्री वैद्य मुरलीधर।
प्रसीद भगवत यांबा प्रसीद भक्तवत्सले प्रसादं कुरु मे देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। नमस्ते जगत चिंत्यमान स्वरूपे नमस्ते महायोगिने। दुर्गमा 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 ನನಗೆ ಅಂತ್ಯವೇ. ಅದು ಓರ್ವ ಹೆಣ್ಣಿಂದಲೇ ಆ ನೋಡಿಯೇ ಬಿಡೋಣ.
बहुत सुंदर स्वयं के अंदर की नेगेटिविटी रूपी असुरों को समाप्त करने के लिए वो स्पिरिचुअल पावर ने किस प्रकार से ये सुंदर दृश्य भारतीय नृत्य कला के रूप में हमारे समक्ष रखा. एक बार फिर से जोरदार तालियों से आप इन सबका अभिवादन कीजिए. मंच पर आसीन सभी स्पीकर से मेरा विशेष अनुरोध रहेगा, आपके आगे आज का इस सेशन का एजेंडा है, समय उसमें निर्धारित है, आप समय की सीमा को सामने रखते हुए अपनी भावनाओं को हमारे समक्ष अवश्य रखिएगा. और अब अनुरोध कर रही हूँ हमारे ऑनर्ड गेस्ट डॉक्टर पुण्य प्रसाद रेग्मी जी को. आप वाइस चांसलर एग्रीकल्चर फॉरेस्टी यूनिवर्सिटी नेपाल से हमारे बीच पधारे हैं.
ओम शांति एंड नमस्कार एंड गुड इवनिंग. सो दिस इज माय ग्रेट ऑनर एंड प्लेजर टू बी हियर in this very divinely holy place of BK University. I would like to thank with grateful appreciation to all the Brahma Kumari University, Brahma Kumari Didi, Brahma Kumar brothers and entire sisters and other supporters who have made this event most successful. Although this is the third day of this event, but I strongly feel that so the organizing committee has fulfilled, successfully met their objectives by today. So tomorrow is bonus for us. So on behalf of all the participants, particularly participants from Nepal, I again would like to express my deep respect and greetings for, you know, the inviting us and giving this opportunity to learn, to experience and empower ourselves for the better world. So thank you very much. When we reach and get down from the car, I saw, you know, the name of the building, Vaikuntha Dham, Trilok Dham. Then I realized, I had an impression that I am not in the earth, but I am in the heaven. So this looks like heaven. Thank you very much. So this summit, nicely organized, starting from the blessings from the Right Honorable President of India, and nice programs, excellent programs, with meditation, with spiritual talk, with plenary sessions, with visits, site visits, and also, very important thing, music, dance, cultural programs, whatnot. So I would like to invite all the participants to give big hand to our, you know, the Brahma Kumari University's team. Thank you very much. I spent, you know, the 40 years in studying as well as teaching agricultural sciences, and also I just retired by 10 days from the university. I was the chief of the executive body. As a vice chancellor, I served for 4 years, and before that I was the vice chair of the Karnali Pradesh Planning Commission. So we thought that, you know, we need to produce good food, to be healthy person. For the good food, for the production of healthy food, we need to maintain our natural resources, land, water, air, everything healthy. That's why we design a policy, and implementing that is the organic, we declare the organic province, Karnali province. There are 7 provinces in Nepal, so only one province has declared as the organic province. When I visited yogic agriculture here, I was so impressed, and I recall my attempt to incorporate some of the Vedic agriculture in our course curriculum in our university. So this is spiritual, you know, the spirituality for the clean environment and health, clean society. This is important for everyone, no matter which country we are from, which religion we belong to, or which caste, ethnicity we follow. So this spirituality, this university, particularly Brahma Kumaris University, is very, very important, equally important for all institutions, for all universities, for all education and other private sectors as well as public sectors. So this is the message I got from here. So this is the take-home message for all of us. I think I am given only 3 minutes, otherwise I have lot of things. I am to express or share a lot of things, but because of time limitations, again, what I learned here is, so if you want to do goods, produce good things. So we have to be eternally, you know, empower ourselves. Our intention must be good. Our thoughts must be good. Our behavior must be good. And then only we can, you know, bring the desirable result. We have seen that, you know, the environment is so degraded. So now we are facing the problem of unsustainable, you know, the development in every parts of the world. So Nepal is very closely linked, related with India, not only geographically, not only economically, but also socially, you know, the spiritually, even culturally. So our very good value systems, norms, these are also degrading because of the modernization, so-called, you know, the modernization, mechanization, so-called, you know, the growth-driven development that we are following. So what is needed is this, the idea, the concept, the wisdom of spirituality has to be incorporated in our daily life, in our development, you know, the paradigm, development models, so that we can change, we can transform the unsustainable, you know, development into sustainable one, which is our dream, for which we have to work unitedly. The concept, the idea, the wisdom, what we have received here needs to be implemented by all of us. Thank you very much.
Thank you, brother. And now I invite brother Dr. Vemuri Krishna, Director of International Medicine, Florida, USA. Spirituality is really gives us holistic health. It may be mental, physical, social, family, and publicly. And I welcome Brother Dr. Vemuri Krishna.
Om Shanti. We have a lot of limitation of the time, so I will try to cover the subject by skipping some of the slides. Government of India spends about 7.8% of the GDP, that is about 91,000 crores, on just trying to maintain the health and well-being of the people, but it doesn't even cover the whole population, because many of them have their own private insurances and private expenses, cash payments. So this really doesn't reflect actual figures. Illness means any injury to the organ by any one of those means. Infections, chemical, nuclear, magnetic radiations, whatever the reason may be, there will be injury to some organ of the body. That is called illness. And major thing nowadays, most of the illnesses are due to stress. That's why this is called disease of modernization, because of the complexity of the lifestyle. Life has become too complicated nowadays, and it had added a lot of stress from the job, from the demands of the families, etc. So stress means, first it is felt in the consciousness due to some sort of adverse situation which happened outside. Accident, sudden death, sudden illness, sudden loss, whatever the cause may be, that is called adverse stimulus. That means unwanted situation happened, and that creates a disturbance emotionally, physically, and in a social manner. Scientifically, stress is called enlargement of the adrenal glands, because of the stress hormones are produced from the adrenal glands. And those adrenal glands, the cortisol which comes from the adrenals, depresses the thymus and the lymphatic glands, and those are called immune cells producing organs. Lymphatic glands produce lymphocytes. Thymus modifies the lymphocytes into T4 cells, T8 cells, killer cells. Those killer cells kill the viruses and bacteria and the cancer cells as well. So if there is a shrinkage or damage to the thymus or lymphatics, you will have unopposed action and the cancers will multiply faster, infections will become uncontrollable. Immediate effect, as you know, you feel some sort of tension, neck pain, back aches, some rapid breathing, fast heart rate, blood pressure goes up, temperature goes up, and some sort of cramping, nervousness. And then long term and short term distress is felt in the consciousness is fears, worries, doubts, tension, anger, jealousy, hatred, dislike, many things, judgmental, all these are negative emotions that will in long run will cause a lot of problems. So let us go into the consciousness first. A soul is not just a point of light, but it is also packed with full of energy of life. Energy means energy of life. It is energy means it is the amount of power required to do any work. That is what energy is. Amount of power you need to produce any work. Energy travels in the form of frequency. That is called vibration. So soul is not just a point of light, but it is a pure energy of life. There's a lot of science behind it, but every thought, every emotion, every feeling, it has its own frequency and it has its own effect on the mind, body, and environment around us. And that soul is situated right near that pituitary gland. I'm unable to show that arrow. But the soul is situated near the pituitary gland, if you can see it on the screen. And that is where we call third ventricle. That's where the hypothalamus is. Hypothalamus has many functions, which we will be describing in a few seconds. And it is particularly concerned with the emotions, production of hormones, and managing all the internal organs. So if there is any disturbance in the consciousness, the vibrations of the soul will affect the hypothalamus. In turn, the hypothalamus creates disturbances in the entire system. These are the frequencies which were measured. They are called Hz, hertz they are called. So that means the number of cycles per second for each emotion. When the number of cycles is less, that is more harmful, because it consumes more energy and it creates more negative hormones. Whereas positive energy, you can see anything above 700 hertz. Enlightenment, peace, joy, love, reason, acceptance, willingness, all these positive emotions create vibrations which will produce good hormones. Anything below 175, that is anger, desire, fear, grief, they're all negative emotions. They produce dangerous hormones which will cause harm to the body. So meditation is to maintain the neutrality, that is 250. hertz. That means the cycles per second. That is when you will, it is like a shutting off, resetting the computer. Same way you reset your consciousness and then return back to your original qualities like peace, love. And first thing is, whenever there is disturbance in the hypothalamus, it produces adrenaline and noradrenaline. Those are called stress hormones, and they are the one which will damage your immune system and enhance the production of cancers. As you can see, the nerves, practically every organ of the body is innervated by the autonomic nervous system. So any disturbance in the nervous system will affect every organ of the body. So same thing. And hypothalamus is called a major endocrine organ. It can produce a lot of chemicals which manage the metabolism, functionality of the body tissues. Endocrine system. And whenever there is a disturbance in the hypothalamus, there will be disturbance in all the endocrines. First thing is, in the pituitary, the growth hormone is affected. Second is thyroid, excess thyroid production. Third is, you see the adrenal glands, they produce cortisol. And then in women, in pancreas, they develop insulin-resistant diabetes because of the stress. The sugar levels go up and the growth hormone goes up and the insulin resistance occurs. The insulin doesn't work, even though they have high insulin levels in the blood, they are still resistant to controlling the sugar. Then fourth thing is ovaries. Women, the women will not have periods. So the new concept is integration of mind, body and spirit, all three, and treating that as one condition. And there is another thing called cancer psyche. That means there is a mental state, emotional state of people. They have certain mindset, certain way of thinking, certain types of negative emotions which will cause cancers. Let us go into that cancer psyche. First thing is, psychiatric illnesses can cause cancer. Second is, some sort of trauma, emotional injury, whether in the childhood or adulthood, due to some loss of relationship or death of near and dear, some sort of occurrence, and they live with those emotions, and then they end up getting cancer after several years. Third thing is hopelessness. Feeling of hopelessness in women was cause of cancer. And fourth type of mental state, mental attitude is excessive adaptation. That means people are trying to please others and they deprive themselves because they pay attention to opinions of others. So they pay attention to the opinions of others, thereby they will suffer emotionally inside and develop cancers. In addition to type A and type B personality traits, there is one more, type C personality. Type C people are appeasing, cooperative, self-sacrificing, unassertive. That means even though something is wrong, they don't stand up and try to straighten up things. They just take it. That is called unassertive. And they suppress their own emotions and they end up getting cancers. So all these negative tendencies produce harmful hormones which will depress your immunity, end up with the cancers. So now we have whole holistic health care where we treat body, spirit, emotions, intellect, and also rather than focusing on the illness, we focus on five factors, which I'm going to come into. So physical, behavioral, spiritual, social, and economic well-being. It is called holistic health. So we address all these five issues. And then in addition to the conventional treatment given by the doctors, we do advise diet, exercise, behavior modification, psychological thinking with the spiritual guidance. One more second. It's almost over. So now there are some studies done that meditation helps breathing exercises and meditation helps asthma problem. And meditation helps majority of the cases of rash, itching. Dermatologists don't know what it is, half of the cases. But they're all due to some sort of dietary intake or some sort of stress. So meditation and dietary modification helps improve their eczema, psoriasis, rashes, etc. And there was a study done in Harvard Medical School, and they published Harvard Health, Heart Health. They said meditation reduces the strokes, heart attacks, blood pressure, and then gastrointestinal problems, stress causes, nervous diarrhea, irritable bowel syndrome, and nervous vomiting. All this can be controlled with meditation alone and dietary modification. Third thing is, whenever people are under stress, their gut intestinal bacteria change. That is called probiotics. The number of good bacteria goes down whenever they are under stress. But once the stress is relieved, the good bacteria start growing back again. And last slide. So far we are trying to connect the emotional vibrations with the effects on the physical body. Now, how do we treat the person? Most important thing is, emotion is the problem. Way of thinking is the problem. Moods are the problem. So in order to correct those problems, first you have to start with the meditation. Third eye. So meditation is a positive thinking, and you are producing positive emotions, and you are creating positive vibrations which will heal the mind and body and the surroundings, and it will affect the people around us as well. So these are called chakras, that is outside. Chakra is nothing but nerve centers in the body, and the soul, if it is harmonized, it will harmonize all the chakras and the entire body is healed. Om Shanti. Paying attention. Thank you.
Thank you, brother, and sorry for interruption. Sabhi manch par aasin vidwan vaktaon se anurodh hai, kripya samay ki seema ka vishesh dhyan rakhiyega. अब अनुरोध कर रही हूँ राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आशा बहन जी से. आप डायरेक्टर हैं ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुड़गांव और उसके साथ ही साथ ब्रह्मा कुमारी की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की 20 प्रोफेशनल्स विंग है, उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है, आप उनकी भी चेयरपर्सन है. अनुरोध करती हूँ आज के विषय पर अपने विचार हमारे समक्ष रखें.
ओम शांति, ओम शांति. परमपिता परमात्मा, निराकार ज्योति बिंदु की अति प्रिय संतान मंच पर आसीन सभी महानुभाव वक्ता और सभा में उपस्थित प्यारे रूहानी भाइयों और बहनों, आज का विषय हम सबके जीवन से बहुत गहरा संबंध रखता है। अगर आपका ध्यान गया हो तो जिनीवा स्विट्जरलैंड में जो WHO की बिल्डिंग है उसके ऊपर बाहर में एक बहुत बड़ी चेयर रखी हुई है, कुर्सी। उस कुर्सी की तीन टांगे हैं, चौथी नहीं है, और कुर्सी गिरी हुई दिखाई हुई है। WHO तीन टांगे और वो चौथी टांग कौन सी है? बहुकाल से हमने फिजिकल, मेंटल, इमोशनल इसके ऊपर बहुत ध्यान दिया, लेकिन जो स्पिरिट है, जो लाइफ एनर्जी है, उस ओर कदापि ध्यान नहीं गया। और वो एस्पेक्ट स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी क्या चीज है? स्पिरिचुअलिटी मीन्स टू अवेकन द स्पिरिट। आप जो लाइफ एनर्जी है उसको अवेकन करना स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स टू एक्टिवेट योर स्पिरिट। Spirituality means to live by the spirit. जैसे कोई चीज होती है, हम कहते हैं इसकी स्पिरिट ये है, तो वो स्पिरिट हमारी क्या है जिसको हमें एक्टिवेट करने की जरूरत है, जिसका हेल्थ के साथ संबंध है। अगर हम गौर से देखें तो हमारे अंदर स्पिरिट के रूप में, हमारे स्वभाव संस्कार के रूप में बहुत सुंदर चीजें हैं जो आपने योग शिविर में भी सुनी होंगी। विजडम, लव, पीस, हैप्पीनेस। हमारी सभा में कोई कितना ही क्रोधी व्यक्ति बैठा हो, उसको हम कहें आज तुमको 24 घंटे की छुट्टी है, जितना मर्जी क्रोध करना चाहो कर लो, यू कैन शाउट, यू कैन येल, यू कैन डू एनीथिंग, खूब क्रोध करो, 24 घंटे करो। आप बताइए कोई कर सकता है? कोई कर सकता है? कितना ही क्रोधी क्यों ना हो, क्यों? वो हमारा स्वभाव संस्कार नहीं है। यदि आप व्यक्ति को कहें कि आपको आज एक दिन के लिए मौन रखना है, ये तो संभव है। तो स्पिरिचुअलिटी हमें ये बताती है कि हमारी अंतर आत्मा बहुत सुंदर, बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र है, और हमने उसको सुषुप्त अवस्था में रखा है। अगर हम उन संकल्पों में जीना सीख जाएं, उन चीजों को अपनाना सीख जाएं, प्रैक्टिकल लाइफ में हम उनको लाएं, ऐसा कोई है जो कहे आई डोंट नीड टू बी लव्ड? मुझे लव ना मिले तो ठीक है, रिस्पेक्ट ना मिले तो ठीक है? एक भी नहीं है। वी लाइक टू बी लव्ड, वी लाइक टू गिव लव। दो चीजें मैं आपके सम्मुख रखना चाहूंगी। एक है जिसको हम कहते हैं एलिवेटेड थिंकिंग। प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग प्रायः चार प्रकार के थॉट्स की चर्चा करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी एंड वेस्ट। लेकिन हमारी संस्कृति ने हमें बताया है और बहु काल से बताया हुआ है, आप याद करिए हम लोग बचपन में क्या सीखते थे, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। किसी ने नहीं कहा सिंपल लिविंग एंड पॉजिटिव थिंकिंग। हाई थिंकिंग वो चीज क्या है, एलिवेटेड थिंकिंग जिसको हम कहते हैं वो क्या है। ये सामान्य रूप से जो कहते हैं कि क्षमा करो और भूल जाओ, किसी ने कुछ कहा आपको और रिटर्न में आपने भी वही कर लिया तो क्या बड़ी बात हुई। आपको किसी ने प्रेम दिया और आपने भी उसको प्रेम दे दिया, क्या बड़ी बात हो गई, वो तो स्वधर्म है, करना ही चाहिए। लेकिन कोई आपको गाली दे और आप उसको रिटर्न में प्रेम दें, इसको कहते हैं एलिवेटेड थिंकिंग। और इसी तरीके के अनेक एग्जाम्पल हो सकते हैं समय की सीमा को ध्यान पर रखते हुए। अतः स्पिरिचुअलिटी हमें ये सिखाती है कि हम अपने विचारों को उच्च बनाएं, उत्कृष्ट बनाएं, सुंदर बनाएं। और जितने ऊंचे विचार होंगे प्यारे भाई और बहनों, हमारे शरीर में जो हार्मोन सेक्रेट होते हैं वो भी हैप्पीनेस के होंगे, सुखदायी होंगे, जिसका प्रभाव हमारे शरीर के अंगों पर पड़ता है। अब एक बात और भी है, एलिवेटेड थिंकिंग। आप कहेंगे बहन जी आज के जमाने में मुश्किल है, मैं उस बात की चर्चा में नहीं जाती हूं, लेकिन एक बात कहूंगी जिसको मैं कहना चाहूंगी, एटॉमिक एफर्ट। एलिवेटेड थिंकिंग के साथ एटॉमिक एफर्ट रखिए। व्हाट इज एटॉमिक एफर्ट? एटॉमिक एफर्ट का अर्थ है कोई बड़े बड़े चेंजेस हम अपनी लाइफ में नहीं ला सकते हैं, मैं मानती हूं, परंतु छोटे छोटे चेंज तो हम ला सकते हैं, छोटे छोटे संकल्पों में परिवर्तन तो ला सकते हैं। अगर इतना ही मैं सोचूं कि आज नवरात्रि चल रहे हैं, मैं किसी के भी प्रति दुर्भावना नहीं रखूंगी, एक संकल्प है, एक दिन के लिए है। आप संकल्प करें मैं आज के दिन कोई नकारात्मक संकल्प नहीं करूंगी, एक छोटा सा ही तो है एफर्ट। इस प्रकार के छोटे छोटे एटॉमिक एफर्ट्स करते हुए धीरे 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 हमारी सोच बदलती है। सोच बदलती है उसमें शक्ति आती है, शक्ति आती है तो बीमारी का सामना करने का हौसला बढ़ता है, और जब वो हौसला बढ़ता है हम रोग से मुक्त होते हैं। आज आवश्यकता इस बात की अवेयरनेस लाने में है कि आप क्या हैं, आपकी अंतर जगत की शक्ति क्या है। दवा और दुआ, हमारी बहन कह रही थी, दुआ सबसे बड़ी दवा है। हम जब किसी एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं तो हम क्या कहते हैं, कोई बीमार होता है तो भी एक दूसरे को जब देखने जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, मुझे दवा दे दो, ये कोई नहीं कहता, सब ये कहते दुआ करिए, दुआ करिए, मुझे आपकी दुआएं चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, वो चीज जो हमारे पास है, जिसके लिए आपको कोई एफर्ट अधिक नहीं करने हैं, क्या ही अच्छा हो हम अपने जीवन में इसको उतारना आरंभ करें, और इसका आरंभ करें कि मैंने सबको दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है, सबके प्रति शुभ भावनाएं देनी है, शुभ भावनाएं लेनी है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताकर समाप्त करूंगी। हम सब ने कोविड फेस किया, कोविड के हरेक के पास बहुत अच्छे अनुभव होंगे। उस समय हमारी स्थिति क्या थी? भयभीत भी थे परंतु यूनाइटेड भी थे। मेरे सामने एक केस आया, बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं, वे कोविड से ग्रस्त हुए। उनकी वाइफ का फोन मेरे पास आया, दीदी आप थोड़ा बात करो, ऑक्सीजन लेवल 60 तक जा रही है, आपको याद कर रहे हैं, परमात्मा को याद कर रहे हैं, आप थोड़ा उनसे वीडियो कॉल कर सकते हैं। मैंने कहा 100%। मैंने वीडियो कॉल की और भाई को बोला, सुधीर भाई आपके पैरामीटर्स कल से अच्छे हैं, दे आर गेटिंग बेटर, आप थोड़ा और जोर लगाओ और याद करो परमात्मा को, अपने हौसले को बढ़ाओ, देखो ये कैसे ठीक हो जाएंगे, कल आप और अच्छे होंगे और अच्छे। उनके अंदर आशा की किरण आई, एनकरेजमेंट मिली, शुभ भावनाएं मिली और आप विश्वास नहीं करेंगे, थोड़े समय के पश्चात आईसीयू से फोन उसकी वाइफ को आता है, बहन जी ने क्या बात की उससे, उसके पैरामीटर बहुत अच्छे हो गए हैं और ही इज वेरी नाइस। आज मैं उस व्यक्ति को जो मृत्यु और जीवन के बीच में झूल रहा था, आज उसको देख करके बहुत हर्ष होता है। एक केस नहीं है, अनेकों हैं। हमने एक्सटर्नल वर्ल्ड में रहते रहते एक्सटर्नल चीजों को बहुत देखा है, परंतु स्वयं को भी भूले और स्वयं के अंदर जो हमारी शक्तियां हैं हमने उनको भी भुलाया। इस कारण आज इस मंच से मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी, आप बलवान हैं, आप शक्तिशाली हैं, अपने अंदर की शक्तियों को उजागर करिए, यही स्पिरिचुअलिटी है। इस मैसेज को आगे दीजिए जिससे हमारी पब्लिक हेल्थ अच्छी होगी। देवी देवताओं की दुनिया में निरोगी कंचन काया थी, देवताओं के श्री लक्ष्मी नारायण के कोई वैद्य सुने आपने, कोई डॉक्टर सुने, कोई हॉस्पिटल सुना? नहीं, वो सृष्टि हमें मिलजुल करके लानी है, ऐसा संकल्प करके हम यहां से जाएं, तब हमारे कॉन्फ्रेंस की सफलता है। ओम शांति।
बहुत सुंदर आशा बहन का बहुत बहुत शुक्रिया। स्पिरिचुअलिटी किस प्रकार से उसके वाइब्रेशंस, शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं हील करती है आज के इस चारों तरफ के दूषित वातावरण को देखते हुए इसकी अति आवश्यकता है। और अब मैं डॉक्टर गीता बेन बोरा, ग्लोबल समिट में हम सभी के बीच पधारी है, फाउंडर एंड डायरेक्टर स्पैरोल फाउंडेशन की है। ये ग्लोबल समिट आपको फेलिसिटेट कर रही है गार्जियन ऑफ ह्यूमैनिटी के सम्मान से सम्मानित कर रही है। आपको स्मृति चिन्ह और माला पहना करके सम्मानित किया जा रहा है। इसके पश्चात आपसे अनुरोध करूंगी सिर्फ दो शब्दों में अपनी इनसाइट, अपनी प्रेरणा हम सभी के समक्ष रखेंगी और उसके पश्चात भ्राता श्री अभिषेक उपाध्याय जी, आप फॉर्मल पॉलिटिकल एडिटर एबीपी न्यूज नोएडा से हैं, आपको भी राष्ट्र चेतना पुरस्कार से ग्लोबल समिट 2024 सम्मानित कर रहा है। अनुरोध कर रही हूँ, कृपया आप मंच पर सामने आइएगा। भ्राता संत प्रसाद राय, सीनियर जर्नलिस्ट एंड फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट एबीपी न्यूज, आपको भी ग्लोबल समिट 2024 राष्ट्र चेतना पुरस्कार से सम्मानित कर रहा है। कृपया आप भी मंच पर सामने आइएगा। तालियां प्यार से बजाइएगा, इसमें आपका भी सम्मान हो रहा है। हमारे ही भाई हैं जो समाज में अपनी विशेषताओं को यूज करते हुए जन जन तक उसका लाभ पहुंचा रहे हैं। और अब अनुरोध है भ्राता डीएन प्रसाद गुरु, एडिटर इन चीफ इनाइजो न्यूज़पेपर तेलंगाना एडिशन, राष्ट्र चेतना पुरस्कार ग्लोबल समिट 2024 से आपको सम्मानित किया जा रहा है। भ्राता संत प्रसाद राय जी, और अनुरोध कर रही हूँ डॉक्टर गीता बेन बोरा से अपनी इनसाइट्स 3 मिनट में हमारे समक्ष रखें।
थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर एंड वंडरफुल इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट अ मेडिकल डॉक्टर। This doctor is coming from the PhD which I have done in computer science. In fact, I am visiting a lot of doctors now because I have a fracture on my feet. Still, I have bouncy walk, but it's an honor to be here. And this place makes me much, much bigger than I am. In fact, I will say taller than I am. And I am tall today, even with a broken feet. That's something which you all have to agree. This is something where थोड़ा हिंदी में बोल सकती हूँ मैं, ज़्यादा हिंदी के मुझे इतना ये नहीं है, but हम social sector में काफ़ी issues पे काम करते हैं, public health भी उसमें से एक है, और जितने भी issues हैं मैं हमेशा बोलती हूँ ये man-made issues हैं, ये अपने आप नहीं हुए, हम ही ने create किए हुए हैं। सो मैं 3 examples आपको बताऊंगी और आप खुद ही समझेंगे कि जो भी हम देख रहे हैं, हेल्थ एक पार्ट है उसका, बट बहुत सारी चीज़ें ये इंटरकनेक्टेड हैं। जो लोग फॉरेन गए हैं वो लोग रिलेट कर पाएंगे कि कोई ब्रिज नहीं है यूरोप और अफ्रीका के बीच में। सो बट अगर आप सी देखेंगे तो जस्ट 14 किलोमीटर्स का वो सी है, अगर उसमें एक ब्रिज बना दिया जाए तो यूरोप और अफ्रीका कनेक्ट हो सकते हैं, सिर्फ 14 किलोमीटर्स। और यूके और फ्रांस के बीच में जो ब्रिज है वो 50 किलोमीटर्स का है। चाइना में जो सी टनल है वो 100 किलोमीटर्स का है। तो ऐसा तो नहीं है कि टनल्स बन नहीं रहे हैं, बट यूरोप और अफ्रीका को कनेक्ट नहीं होना है। क्यों नहीं होना है, किस लिए इंटेंशन नहीं है, वो आप ज़्यादा समझ सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, पूरे वर्ल्ड में हम लोग 4 बिलियन मेट्रिक टन्स अनाज उगाते हैं. ये काफ़ी है 10 बिलियन पॉपुलेशन जो है हमारी, अभी है नहीं एक्चुअली. 2024 में जो सेंसस है वो कहता है कि वी आर 8 बिलियन, एंड इतना अनाज काफ़ी है 10 बिलियन लोगों को खिला पाने के लिए. लेकिन आप अगर WHO के आंकड़े देखेंगे तो हर दिन एवरी डे 25,000 डेथ होती है हंगर से या उससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनसे. मैल न्यूट्रिशन एक है, और भी बहुत सारी डिजीजेज होते हैं जब आपको खाना नहीं मिलता है. सो ये क्यों है जबकि हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा अनाज है? लेकिन इसका आंसर भी हमें ही ढूंढना है. तीसरा जो पॉजिटिव आंसर है वो उस प्रोजेक्ट में मैं थी. अफ्रीका में एक प्रोजेक्ट था जिसमें जो पाइप होता है जिससे हम ड्रिंक करते हैं नॉर्मल, जैसे हम कोक पीते हैं या लिमका पीते हैं, सो वो सिर्फ पाइप डेवलप किया गया. और उस पाइप की हेल्प से अगर आप कंटैमिनेटेड वाटर पीते हैं तो जनरली क्या होता है, अगर आप डायरेक्ट कंटैमिनेटेड वाटर पी रहे हैं तो कोई फिल्टर नहीं है, और वहाँ पे ऐसे लोग नहीं हैं जो RO लगा सके अपने घरों में. तो उन्हें ऐसा एक स्ट्रॉ दिया गया जिसके थ्रू वो कंटैमिनेटेड वाटर पियेंगे तो बैक्टीरिया अपने आप किल हो जाते हैं, उसमें ऑलरेडी एक छोटा सा फिल्टर है. अब इस चीज़ के लिए, इससे पहले क्या हो रहा था कि बहुत सारा पानी जो है इम्पोर्ट कर रहा था, बहुत मिलियंस ऑफ डॉलर्स WHO ने और UN ने खर्च किए इस प्रोजेक्ट में कि लोग उन तक सेफ ड्रिंकिंग वाटर पहुँचाया जाए, क्योंकि बहुत सारी डेथ हो रही थी. जैसे हंगर से 25,000 हर दिन मर रहे हैं, उसमें से 9,000 सिर्फ वो बच्चे हैं जो 5 साल से कम हैं. सो इस तरह का इन्वेंशन होता है, बट देन इंटेंशंस हमारे कैसे हैं, क्या हम सच में करना चाहते हैं? और इंटेंशन सिर्फ लोगों से ही नहीं आता है, उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं. तो ये जो चीज़ें हैं ये एग्जांपल बताते हैं हमें कि चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो या कोई और भी सेक्टर हो, अगर हम चाहते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. बींग इन सोशल इंडस्ट्री, हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो इस तरह के हैं कि PHCs ठीक करने हैं. आपको पता नहीं कितने लोगों को पता है कि गवर्नमेंट का जो प्लान है वो इतना ब्यूटीफुल है पेपर पे कि हर गांव में एक PHC होगा, उसके बाद एक CHC है, उसके बाद उसके ऊपर फिर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है. सो ये जो चीज़ें हैं ये ऑलरेडी इन ऑन पेपर अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो बहुत ब्यूटीफुल प्रोग्राम है. बट इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है कि PHCs में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे वेइंग मशीन और BP चेक करने की मशीन जो घरों में होती है वो भी वहाँ पे ठीक से काम नहीं कर रही है. तो उस चीज़ के लिए भी फंड रिक्वेस्ट आते हैं कि ये PHC है, इतने गाँव को सपोर्ट करता है, फिर डॉक्टर्स नहीं हैं अवेलेबल. सो इस तरह के जो रिक्वेस्ट आते हैं तो फिर ये लगता है कि सब कुछ क्या पेपर्स में है, हम जब पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं तो ये कैसे सॉल्व होगा. सो थोड़ा सा मुश्किल लगता है. और दूसरा जो ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉब्लम है, ह्यूमन रिसोर्स एंड मेडिकल इंडस्ट्री, द प्रॉब्लम इज कि कहते हैं कि हर WHO कहता है कि हर 1,000 पर्सन में एक स्पेशलिस्ट होना चाहिए, मेडिकल स्पेशलिस्ट. बट हमारे कंट्री में 10,000 में एक स्पेशलिस्ट है. वुमेन एम्पावरमेंट में जो हम काम करते हैं तो वहाँ पे ये जो डेटा है ये 17,000 का है. 17,000 वुमेन में सिर्फ एक डॉक्टर है हमारे पास. तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो सकती है? डेफिनेटली NGOs काफ़ी काम कर रहे हैं, हम ही नहीं हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं. बट प्रॉब्लम वही है कि क्या हम सही तरीके से काम कर रहे हैं? क्या हमारा सच में इंटेंशन है कि हमें इससे आगे कैसे जाना है, कैसे ठीक करना है? तो एक जो मेरे पास सोल्यूशन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. बहुत सारे डॉक्टर्स आजकल टेक्नोक्रेट बन गए हैं. सो उससे बहुत सारी सुविधाएं हो रही हैं, बहुत इजी हो रहा है एक्सेस हेल्थ केयर का, बहुत अफोर्डेबल हो रहा है ये सब. लेकिन वही है कि क्या हम करना चाहते हैं, क्या हम सीखना चाहते हैं? इवन जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर वो AI बिल्कुल एकदम सिंपल है, आप वेयरेबल टेक्नोलॉजी है, जैसे आप हाथ में रिंग पहनते हैं, AI रिंग्स अवेलेबल हैं, AI टूल्स हैं जो सिर्फ आप जो बोल रहे हैं, स्पीच डिटेक्शन से ये पता कर सकता है कि आपको हार्ट अटैक आने वाला है या आपको स्ट्रोक आने वाला है. इनफैक्ट मेंटल हेल्थ के केस में भी आपका सिर्फ स्पीच एनालिसिस, आपका फेस रिकॉग्निशन करके, और अगर आप सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं, काफ़ी बच्चे आजकल सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं, तो वो एनालिसिस करके कि इसने क्या पोस्ट डाला, क्या सोचा होगा, क्या थॉट रहे होंगे, वो देख के ये बता सकता है कि ये पर्सन डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी है या इसको बाइपोलर डिजीज है। तो काफ़ी जो प्रॉब्लम्स है वो वैसे भी सॉल्व हो सकती है, अगेन इंटेंशन हमारा भी और सबका भी, और ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है। जैसे कि स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रह्मा कुमारी तो माइंड के डॉक्टर है ऑलरेडी, सो अगर वो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन ना हो तो पता नहीं कितने मेडिकल प्रोफेशनल्स चाहिए हमें टू सॉल्व और टू गिव काउंसलिंग टू सच पीपल। मोरोवर दूसरी जो चीज़ें हैं, जैसे दो फैक्टर और है कि हम जो कहते हैं हमें सॉल्व करना है, अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बोल रहे हैं कि जो बड़े लोग हैं या फिर जो आर्टिस्ट लोग हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम तय करेंगे? क्योंकि फैमिलीज में आप किसी के साथ 25 साल से रह रहे हो, शायद आप उससे कम और जिसको आप फॉलो करते हैं उससे ज़्यादा उसको ज़्यादा लाइक करते हो या उसकी बातें ज़्यादा सुनते हो। तो जब भी मैं आर्टिस्ट लोगों से मिलती हूँ तो उन्हें यही कहती हूँ कि आप लोग ऐसी चीज़ों को प्रमोट ना करें, सिर्फ पैसों के लिए आप ऐसे ऐड ना करें जिससे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं और वो आपको देख भी रहे हैं। और एक इंसिडेंस हुआ था, फुटबॉलर है रोनाल्डो, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ उन्होंने अपनी जो कोक है उसको हटा के पानी की बॉटल रख दी थी, उसकी वजह से कोक इंडस्ट्री के शेयर्स एक वीक तक डाउन हो गए थे। तो जब ऐसे इन्फ्लुएंशियल पीपल अगर हेल्थ की बात करते हैं, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन अगर हेल्थ और जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उसकी बात करते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। एंड टुवर्ड्स द एंड आई विल से लाइक चैरिटी इज नॉट एन एक्ट, इट कैनॉट बी एन एक्ट, इट्स जस्ट अ सिंपल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच वी ऑल बॉर्न विथ एंड वी हैव टू फुलफिल इट। इट्स मी ऑनर टू बी हियर, थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच गीता बेन। और अब अनुरोध कर रही हूँ भ्राता अभिषेक उपाध्याय, फॉर्मर पॉलिटिकल एडिटर एबीपी न्यूज नोएडा, कृपया समय के पाबंद रहिएगा।
ओम शांति, आप सभी को सादर प्रणाम। दीदी ने जिस समय की बात की वो बहुत ही कीमती है, बहुत ही मूल्यवान है, इसलिए इस भरोसे के साथ ही शुरुआत कर रहा हूँ कि उसका पाबंद रहते हुए अपनी बात कहूँगा मैं, क्योंकि समय से ज्यादा कीमती और कुछ नहीं है। देखिए, यहाँ पर आ करके मैं तो पत्रकार हूँ और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हम देश दुनिया में घूमते हैं लेकिन जो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो बदलाव होता है, जिसकी उम्मीद हमको है, आपको है, यहाँ बैठे लोगों को है, जिसकी उम्मीद कभी स्वामी विवेकानंद ने की थी, स्वामी श्रद्धानंद ने की थी, हमारे देश के ऋषि मुनियों ने की थी, सप्तर्षियों ने की थी, वो ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि वो बदलाव जिसके लिए हम सभी अपनी कल्पनाओं में सोचते हैं वो क्या होगा, यहां जब हम आते हैं, मैं दूसरी बार आया हूं और मैं अपने अनुभव से आपको बता दूं कि उस बदलाव की तस्वीर यहां समझ में आती है। ये इस दुनिया का इकलौता ऐसा संगठन है जहां पर मातृशक्ति नेतृत्व कर रही है, मातृशक्ति आगे है, मातृशक्ति का जो विचार है, उसकी जो मानवता है, उसकी जो करुणा है, उसकी जो शीतलता है, उसका जो ओज है, उसका जो तेजस है, उसका जो संवेग है और उसकी जो दृष्टि है, वो दृष्टि यहां से पूरी दुनिया की मानवता को राह दिखा रही है और यही पहला बदलाव है। जहां मातृशक्ति आगे रहेगी, ये अपनी माँ से मैंने पाया और सीखा है कि जहां मातृशक्ति के वचनों पर हम चलेंगे तो जीवन बदल जाएगा, दुनिया बदल जाएगी, विचार बदल जाएंगे, संस्कार जो है वो एक सार्थक दिशा की ओर उन्मुक्त हो जाएंगे और वो परिवर्तन आ जाएगा जिसकी हम कल्पना करते थे। हमारे यहाँ आप सोचिए, मैं तो इतिहास में का विद्यार्थी रहा हूँ, हड़प्पा सभ्यता देखिए, मोहन जोदड़ो देखिए, मातृ देवी की प्रतिमा उसमें मिली है, यानी कि मातृ सत्तात्मक व्यवस्था जो है वो हमारे केंद्र में रही है आज से 5000 साल पहले। आप वैदिक काल की बात कीजिए, जब वैदिक काल में गार्गी और याज्ञवल्क्य, ऋषि याज्ञवल्क्य का जो शास्त्रार्थ हुआ था और गार्गी जीत गई थी और एक नया इतिहास रचा था। अद्वैत के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य को जिस तरह से भारती ने अपने शास्त्रार्थ के ज्ञान के आगे उनको स्तब्ध कर दिया था, ये उस भारत की परंपरा है और ये ब्रह्म कुमारी मिशन उस परंपरा को पुनर्जीवन दे रहा है। ये हमारे सौभाग्य की बात है, ये हमारे लिए भाग्य की बात है और यही पुनरोदय का काल है। यहीं से मुझे लगता है कि हमको एक प्रस्थान बिंदु हम चुनते हैं कि जो बदलाव की हम बातें कर रहे हैं उसका ढांचा क्या होगा, वो क्या है जिससे वो बदलेगा। तो उसका पहला ढांचा ये जो पंक्ति है यहां पर, दीदी जो बैठी हुई हैं, जो हम सबको निर्देश दे रही हैं, यही वो रास्ता है और यही रास्ता यहां से जाकर के हमको अपने घरों में ले जाना है, मातृशक्ति को आगे रखना है, उनके विचारों से पल्लवित, पुष्पित और फलीभूत होना है। दूसरी बात, और दो ही बात कहकर के बात समाप्त करूंगा, दीदी के समय की सीमा का पूरा ध्यान रखूंगा मैं। दूसरी बात है कि शक्ति की बात है। देखिए, जो बात यहां पर अभी तक मैं सुन रहा हूं उसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इस दुनिया में जब आप जाते हैं तो तमाम तरह की परेशानियों से, तमाम तरह की विपदाओं से, तमाम तरह की आशंकाओं से ग्रसित होते हैं, लेकिन आपके भीतर जो शक्ति है उस शक्ति का कोई और छोर नहीं है। लेकिन उस शक्ति को पहचाने का कौन, उस शक्ति की पहचान यहां कराई जा रही है। और जिस दिन आप इस शक्ति को पहचान लेंगे उसके बाद आप किसी बीमारी के आगे, किसी लाचारी के आगे, किसी समस्या के आगे, किसी युद्ध के आगे, किसी संघर्ष के आगे, किसी आशंका के आगे आप कभी लाचार नहीं होंगे, आप कभी विवश नहीं होंगे। आपसे ज्यादा प्रतापी, आपसे ज्यादा बलशाली, आपसे ज्यादा पौरुषमयी दूसरा नहीं होगा। उस शक्ति का यहां भान कराया जा रहा है। और मैं बात समाप्त करने से पहले वो समय याद दिलाऊंगा जब रामायण में होता है कि प्रभु श्री राम रावण से हार रहे होते हैं, वो नहीं जीत पाते हैं, तो उनको यही परामर्श मिलता है कि शक्ति की पूजा करो। और वो शक्ति की पूजा करते हैं और शक्ति की पूजा करते समय जो उस समय निराला जी ने लिखा है कि जानकी हाय उद्धार पिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। तो जो राम का मन कभी थका नहीं वही मन विजय प्राप्त करता है। तो ये उसी शक्ति का उत्थान है, ये उसी शक्ति की खोज है और ये शक्ति हमारे ही भीतर है। उसको पहचानने के लिए हमको इस समय को पहचानना होगा, इस अवसर को पहचानना होगा और यहां से जो ज्ञान की धारा बह रही है उस धारा में खुद को प्रवाहित कर लेना होगा, खुद को तिरोहित कर लेना होगा। यही हमारा सबसे शुभ संकल्प होगा। सादर प्रणाम।
हमारे समक्ष आ रहे हैं भ्राता संत प्रसाद राय जी, सीनियर जर्नलिस्ट, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट एबीपी न्यूज। समय की मर्यादा पर ध्यान दीजिएगा।
ओम शांति। इस विशाल सभागार में मौजूद ब्रह्म कुमारी के हमारे सभी भाइयों और बहनों, इस मंच पर उपस्थित तमाम विद्वजन, अभी आप अभिषेक जी को सुन रहे थे, बहुत ही ओजस्वी भाषण दिया उन्होंने और निश्चित रूप से कुछ चीजें जो उन्होंने बताई वो मैं वहीं से इसकी शुरुआत करता हूं। जहां से मैं आया हूं दोस्तों, पॉल्यूशन बहुत है वहां दिल्ली शहर में। तो पहली बार यहां इस संस्थान में आया आज सुबह, पॉल्यूशन बहुत है। पॉल्यूशन किस चीज का, सिर्फ हवा या आवाज यानी एयर और साउंड का पॉल्यूशन भर नहीं है, विचारों का भी पॉल्यूशन है, हमारे मन का पॉल्यूशन है, हमारे तन का पॉल्यूशन है और अब तो धन का भी पॉल्यूशन होने लगा है। उस पॉल्यूशन में मैं जो आज महसूस कर रहा हूं वहां से आने के बाद कि इस जगह पर जहां मैं अभी हूं शायद उस पॉल्यूशन का सॉल्यूशन यहां पे है, लेकिन पॉल्यूशन से सॉल्यूशन तक पहुंचने का सफर सिर्फ 800 किलोमीटर या 8 घंटे की दूरी मात्र नहीं है, जीवन बीत जाता है, पहुंच ही नहीं पाते। पॉल्यूशन से सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाते, इसके पीछे क्या वजह है, क्यों नहीं पहुंच पाते, आज मैं इस पे सोच रहा था यहां आने के बाद। ये शायद यहां का असर हो कि वो सोचने पर मैं मजबूर हुआ। होता क्या है कि पॉल्यूशन से जब आप लड़ते हैं तो लड़ने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए होती है, एग्जीक्यूशन चाहिए होता है। उस एग्जीक्यूशन के दौरान ऐसे मैनिपुलेशन होते हैं आपके अंदर से, आपके बाहर से, और आप ठीकरा फोड़ते किस पे हैं, जब आप नहीं पहुंच पाते तो सिचुएशन पे। आप कहते हैं हालात ऐसे थे कि उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। दरअसल हमारी आदत में शुमार हो चुका है कि हम उसी पॉल्यूशन में अपने आप को सरवाइव करते रहें, हम सॉल्यूशन की तरफ शायद बढ़ना नहीं चाहते। लेकिन यहां आज आने के बाद जिन लोगों से मैंने बात की, जो यहां की आबोहवा, यहां के लोगों से मिला जुला, तो मुझे शायद ये महसूस हुआ कि बहुत दूरी नहीं है, अगर आप ठान लें कि मुझे उन प्रदूषित विचारों से आजादी चाहिए तो बहुत आसान है। अब उसमें दो चीजें हैं। लोग कहते हैं आज दुनिया साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता है। मैं जिस एआई को आज महसूस कर रहा हूं यहां पे, वो आध्यात्मिक इंटेलिजेंस है। उस एआई की कहीं चर्चा नहीं होती, ना हम करते हैं ना कोई और करता है। हमने कहानियों में पढ़ा था कि ज्ञान प्राप्त होते थे, ज्ञान उनको यहां प्राप्त हुआ, इनको यहां प्राप्त हुआ, ऋषि मुनियों को प्राप्त हुआ। वो ज्ञान क्या चीज था? शायद वही ज्ञान था जो सॉल्यूशन था, जो उस प्रदूषण से आजादी दिलाने का माध्यम था। शायद वही ज्ञान था जो परमपिता की खोज थी, जो हमारे निराकार ब्रह्म की खोज थी। चूंकि समय की सीमा है, तो आज इस आबोहवा का असर था कि मैंने सोचा कुछ 4-5 लाइनें लिखी जाएं, एक कविता की तरह ढाला जाए उसको। आज ही की रचना है, मैं आपको सुनाना चाहता हूं अगर अनुमति हो दीदी की तो। जब उजाले में अंधेरा सा दिखता है। दरअसल ये क्या है कि कब हमें जरूरत कब पड़ती है, हमने सुना है मन चंगा तो कठौती में गंगा, इसलिए मन का मैल साफ करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जब उजाले में अंधेरा सा दिखता है, जब झूठ के बाजार में सच बिकता है, तब तब मुझे आपकी याद आती है। किसकी? शायद उसी की बात, उसी परमात्मा की, उसी परमपिता की, उसी निराकार ब्रह्म की। जब उजाले में अंधेरा सा दिखता है, जब झूठ के बाजार में सच बिकता है, तब तब मुझे आपकी याद आती है। जब मस्तिष्क मन से अलग चलता है, जब कुछ खलता है, जब स्वप्न जलता है, तब तब मुझे आपकी याद आती है। जब संकल्प से विकल्प टकराता है, संकल्प से विकल्प कैसे टकराता है? आपने संकल्प लिया कि मुझे 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है, और विकल्प में 4 पकवान और व्यंजन आ गए, तो मन डोलने लगा। जो जब संकल्प से विकल्प टकराता है, प्रश्न द्वार पर उत्तर दस्तक दे जाता है, जब समष्टि में सूक्ष्म विलीन हो जाता है, जब संयम की दीवार हिल जाती है, जब खामोशी शोर में मिल जाती है, तब तब मुझे आपकी याद आती है। जब भी मेरा दृढ़ विश्वास विवश हुआ, जब भी मेरा दृढ़ विश्वास विवश हुआ, वही दिन मेरे लिए परमात्मा का दिवस हुआ, वही दिन मेरे लिए परमात्मा का दिवस हुआ। धन्यवाद, नमस्कार।
बहुत सुंदर। काफी समय से हम विचारों के लहरों में लहरा रहे हैं, और अभी कुछ क्षणों के लिए हम इस साकार दुनिया से पार, अपने इन साकारी विचारों से भी परे, एक अंतर की यात्रा की ओर, जहां स्वयं में आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करेंगे और उस तरफ हमें ले चलेंगी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी हेमलता बहन। आप हमारे इंदौर की सेंटर्स की डायरेक्टर हैं। उससे पूर्व 2 अनाउंसमेंट्स हैं। सभी बीके भाई बहनों से अनुरोध है, कल प्रातः का मुरली क्लास डायमंड हॉल में रहेगा,
और उसके तुरंत पश्चात वैलेडिक्ट्री सेशन डायमंड हॉल में ही 8 से 9 रहेगा। तो कॉन्फ्रेंस ग्लोबल समिट में आए हुए हमारे सभी डेलीगेट्स स्पीकर से भी अनुरोध है, कृपया कल प्रातः 7:45 पर डायमंड हॉल में अवश्य पहुंच जाएंगे, जहां समापन सत्र होगा। इसके साथ ही टीचर्स और गाइड भाई बहन जो भी हैं, उनके लिए एक सूचना है, ग्लोबल समिट 2024 में आए हुए सभी मेहमानों के लिए सर्टिफिकेट बनाया गया है, जिसे आनंद भवन शांतिवन के 3D हॉल से प्राप्त कर सकते हैं। कृपया गाइड भाई अथवा टीचर्स बहन ही अपने मेहमानों के सर्टिफिकेट्स लेकर के जाएं। यदि कोई टीचर या गाइड बहन आपके साथ ना हो, उस परिस्थिति में आप स्वयं सर्टिफिकेट ले सकते हैं, परंतु विशेष अनुरोध है, आप सेशन छोड़ करके सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं जाएंगे। उसका समय है प्रातः 9 से 1 बजे और सायं 4:30 से 7 बजे। और अब हम चलते हैं अंतर की यात्रा की ओर। राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी हेमलता बहन,
ओम शांति। आज के इस सत्र में मंचासीन हमारे सभी महानुभाव एवं सभा में उपस्थित भाइयों बहनों, आप सभी ने अभी हमारे पूर्व वक्ताओं से आध्यात्मिक स्वास्थ्य के बारे में समझा है और ये अनुभव किया है कि किसी भी परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में कोई भी नकारात्मक प्रतिक्रिया देना, स्ट्रेस में आना, अपना आपा खो देना, हलचल में आना, डिस्टर्ब हो जाना, दुखी हो जाना, क्षमा नहीं कर पाना, ये सब अगर आपके अंदर होता है तो हमें आध्यात्मिक रीति से स्वस्थ और सशक्त होने की आवश्यकता है। तो हम देखते हैं कि जब हम फिजिकल स्वास्थ्य को ठीक करना चाहते हैं तो हम अपने आसपास की हवा, पानी या वायुमंडल वातावरण को नहीं बदलते, अपनी इम्यून पावर को बढ़ाते हैं। इसी प्रकार आध्यात्मिक स्वास्थ्य अर्थात आत्मा की ओर इंगित करता है, हमें आत्मा की इम्यून पावर को बढ़ाना होगा। आत्मा की इम्यून पावर को बढ़ाने के लिए हमें आत्मा के मूल स्वभाव, निजी गुणों को अनुभव करना होगा। जो आत्मा का मूल स्वभाव है, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप। तो चलिए हम सब अपने उस आत्मा के मूल स्वरूप का अनुभव कर आध्यात्मिक रूप से स्वयं को स्वस्थ बनाएं, सशक्त बनाएं। आप सब रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे। मैं आपको जो विचार देती जाऊंगी उस अनुसार अपने आप को उस स्वरूप में अनुभव करते जाएंगे। अपने मन को सभी बाह्य बातों से समेटकर श्वासों पर एकाग्र करें। श्वास और गहरी होती जा रही है। श्वास की गति के साथ साथ मेरे मन की गति भी धीमी होती जा रही है। मैं पूर्णतया रिलैक्स होती जा रही हूं। बहुत हल्कापन अनुभव कर रही हूँ। इस शांत मन में मैं अपने आप को संकल्प देती हूँ मैं भ्रकुटि के बीच में चमकता हुआ एक सितारा हूँ। ज्योतिर्मय बिंदु स्वरूप उस सितारे को देखिए। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। शरीर एकदम अलग है। मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट शरीर से अलग हूँ। मेरा मन शांत होता जा रहा है, स्थिर होता जा रहा है। इस शांत झील में मैं अपने सन्मुख पॉइंट ऑफ लाइट परम पिता परमात्मा को अपने सन्मुख देख रही हूँ। सर्वशक्तिमान परमात्मा मेरी छत्र छाया बन गए हैं। उनसे निकलने वाली प्रेम भरी शक्तिशाली पवित्र किरणें धीरे धीरे मुझ आत्मा पर पड़ती जा रही हैं, मुझ में समाती जा रही हैं। इन पवित्र किरणों से मेरे मन की मेरी आत्मा की हीलिंग हो रही है। इन पवित्र किरणों के प्रवाह में मेरे मन का ईर्ष्या द्वेष नफरत क्रोध प्रतिशोध की भावना सब कुछ बहता चला जा रहा है। मेरे मन की सफाई होती जा रही है। मेरी आत्मा एकदम शुद्ध बनती जा रही है। परमात्मा से प्राप्त इन पवित्र किरणों के आधार से मैं अपने आप को शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप सुख स्वरूप शक्ति स्वरूप अनुभव कर रही हूँ। ये प्यार भरी पवित्रता की किरणें अपनत्व भरी किरणें मेरे मस्तक से मेरे नैनों से प्रवाहित होती हुई सारे ही विश्व की आत्माओं और प्रकृति तक जा रही है। इन प्यार भरी शक्तिशाली किरणों को पाकर प्रकृति और अन्य सभी आत्माएं खुश हो रही हैं। अन्य आत्माओं के मन के अंदर से भी नकारात्मक भावनाएं बदले की भावना ईर्ष्या द्वेष सब बहता जा रहा है। सभी के मन की हीलिंग हो रही है, सफाई हो रही है। सभी अपने आप को बहुत ही शुद्ध प्रेम और सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप और स्वस्थ अनुभव कर रहे हैं। मैं आत्मा भी अपने आप को शक्तिशाली और स्वस्थ अनुभव करती हुई महसूस कर रही हूँ कि सृष्टि नाटक में आने वाली हर परिस्थिति को मैं साक्षी होकर समर्थ स्थिति से पार करती जाऊंगी। मैं सदा स्वस्थ हूँ, सदा प्रसन्न हूँ, सदा स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ। ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति। पुनः आ जाइए इस साकार धारा पर। एंड नाउ आई इनवाइट डॉक्टर इटिकोन वटाना, इनोवेटिव इंटीग्रेटेड लाइफ एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट फ्रॉम थाईलैंड। प्लीज शेयर योर गुड विशेस and request you to be within time.
Om Shanti. I am Dr. Itikon Watana from Thailand, the land of Buddhism. 90% of our population are Buddhism, and today I have 3 minutes. I can tell you that the number 3 is a magic number. I will talk about three father. I study Buddhism before I study normal education. I start from 3 years old and did meditation in Buddhism way, close eyes and deep meditation, and up to now 70 years I still practice that way. Then after I come to India at my 20 years old at Pune, study medicine, and from that I very impressioned about Mahatma Gandhi, the father of India. He said, study or learn as if you are, will live forever and spend your life as if today is the last day of your life. So I follow his court. I finished 5 doctor degree, 4 master degree, and 7 bachelor degree that follow him. Anyway, after I start working, I have been working with the Society of Albert Einstein and Nikola Tesla Society as a team of the scientists. And Albert Einstein said that everything is energy. Anything you want to be. If you know the frequency of what you want to be, and you can tune yourself, your energy, with that energy, you will get everything, but you will have to learn that from spiritual education. There was no spiritual education in Thailand. With the grace of Baba, Daddy Changi, come to Thailand last 21 years, and she invited me to join. He said that I am coming from the spiritual university. Then I went to Oxford, I went to London, come to Madhuban. From that day up to now, 20 years, I'm Brahma Kumaris, I'm BK. This is just one pull from Baba. And then when I study, the second father that I like to talk about is the father of medicine, Hippocrates. He said everything healing is a self-healing. So the word self coming from that, but I didn't really understand. Even when I try to study from Mahatma Gandhi, he said that if you want to change the world, change from starting from yourself. Again, the word self come. Then when I come to Brahma Kumaris, I realize that when we talk about the self, what is the self? I understand that the self is a spiritual energy in the light form. So it reminds me that when I work with the approach of the Nikola Tesla, he said everything is light. Then from that up to now, I practice, I research, I experiment about what is the light. What is the light that we see? And the light is our spirituality, many of our speakers talking, repeating the same thing, but I would like to add a little bit different from Nikola Tesla, because now the world, the doctor, is talking most about body and mind medicine. I would like to add one more to be 3. It is energy of spiritual. Because Nikola Tesla said that if we look at the life, we have 3 parts in the life, 3 things in life. One is body, 2 is mind, 3 spirit. And in medicine, he said that most of the diseases are coming from spirit. So for healing, if healing from the spirit, therefore can heal most of the disease that I follow. And myself, now I am 70 years old, we cannot stop our chronological age, the birth from born up to now, but we can stop our biological age. For more than 10 years, I stopped my biological age at 53. Though I 70, but I look 53. Yeah, this is from the spiritual healing. This is from the holistic healing. So, in conclusion, in distributed, I would like to tell you that holistic healing is healing the self from the spirit. Then it can go, you can heal the self, we can go to the any other people, like public health, can heal from the spirit. This is my word that I would like to talk to you, traveling for 7 days to talk about 3 minutes. Thank you very much for your attention. Om Shanti.
Thank you, brother. Now I invite Professor Brother K.S. Rangappa, scientist and former Vice Chancellor, University of Mysore.
Om Shakti. Respected the DGs, the other dignitaries on the dais, of the dais, brothers and sisters, ladies and gentlemen, media friends. It's my proud privilege to be here on this occasion to participate at Global Summit 2024. And I believe it can revolutionize the way we approach health and well-being, the holistic healing and the merging of spirituality with public health. My participation is the first time here, and as a true scientist, enjoyed the concept of the activities going on in this organization since forth. In today's fast-moving, material-driven world, spirituality is often overlooked as something abstract. However, it is far more than a personal belief or religious practice. It's a powerful force that influences both individual and a collective well-being. Spirituality touches the core of who we are as individuals and as members of a community. It shapes our values, ethics, and sense of responsibility. In a world filled with stress, anxiety, and never-ending quest for material success, spirituality provides a foundation for inner space, inner peace. It encourages individuals to slow down, reflect, and reconnect with their inner selves. This self-awareness promotes emotional balance, reduces mental health issues, and instills a sense of purpose and direction in life. We all know that one of our most important aspects of spirituality is compassion. Spiritual traditions across the world, whether it is Buddhism, Christianity, Islam, or Hinduism, emphasize the importance of compassion as a key virtue. When individuals are spiritually aligned, they are naturally down to help others. This drive to serve is critical for building a healthy society. In a world where environmental degradation and resource exploitation are growing concerns, spirituality offers a solution. It fosters a sense of stewardship for the earth, teaching us to live in harmony with nature. Indigenous spiritual practices, for example, have long advocated for a respectful relationship with nature, promoting sustainability as spiritual responsibility. As we face climate change and environmental crisis, integrating spiritual values into our daily lives can lead to more conscious consumption, conservation, and overall care for that planet. Along with advancements in medical sciences for healing many diseases, as mentioned by the doctor, there is always a need for awareness about healing the body through nurturing the mind, spirit, and soul, because illness is not just a physical phenomenon, but often reflects imbalances in mental, emotional, and spiritual realms. For centuries, many indigenous and ancient cultures practiced forms of holistic healing, emphasizing the importance of living in harmony with nature, oneself, and the divine. Public health, by definition, aims to improve the health and well-being of populations. Traditionally, this has been achieved through policies, education, preventive medicine, and interventions targeting physical health. However, by acknowledging the importance of spirituality, we can create a more integrated and effective public health framework. Community engagement and empowerment programs from spiritual organizations, public health programs that incorporate spiritual care, offering services like meditation sessions or counseling can be some of the important ways to help public for holistic healing. Practicing like yoga, tai chi, mindfulness based stress reduction have been scientifically shown to improve both mental and physical health outcomes. These practices rooted in spiritual traditions should be introduced into public health frameworks as preventive measures and therapeutic interventions. Furthermore, to implement holistic approaches effectively, we need more research to understand the precise mechanisms by which spirituality impacts health. The partnership between the modern medicine and ancient wisdom should not be seen as contradictory, but complementary. Both fields seek the outcome, human flourishing. Once again, I would like to congratulate the organizers, Prajapita Brahma Kumaris Ishwari Vishwavidyalaya, for organizing this summit with a great visionary, themes and topics. I am sure every participant of this summit is carrying their home an abundance of spiritual knowledge. Thank you for giving an opportunity to be here on this occasion. Thank you one and all.
Bahut bahut shukriya. Anurodh kar rahi hu bhrata B.K. Nathmal bhai, coordinator Brahma Kumaris Katak se. अपनी शुभ भावनाएं एक मिनट के लिए हमारे समक्ष रखें. हम कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर जा रहे हैं. अनुरोध है कृपया और 5-7 मिनट आप इंतजार कीजिएगा.
ओम शांति. सम्मानीय मंच पर उपस्थित विद्वत जन, समक्ष उपस्थित हमारे बहुत सुंदर उपस्थिति हमारे भाई बहनों की, आज का बहुत सुंदर ये टॉपिक, लेकिन समय के अभाव से आज साइंस के माध्यम से हम सभी ने शारीरिक बीमारियों को ठीक करने के लिए बहुत सारे उपाय, बहुत प्रकार के साधन उपलब्ध हैं, उपलब्ध कराए भी गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ में हम ये देखते हैं कि सार्वजनिक स्तर पर हमारे स्वास्थ्य की जितनी उन्नति होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, वो कारण यह है कि हमारे अंदर जो आत्मिक शक्ति का जो बल है, जिसको हम कहते हैं कि मन को सशक्त करने की जरूरत है, और जब हम मन को सशक्त करते हैं तो हमारा शरीर पर भी कंट्रोल होता है, शरीर की बीमारियां भी कंट्रोल में आ जाती हैं, और हमारा जो सार्वजनिक स्वास्थ्य में भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो मन को सशक्त करने के लिए हमें उस मन को परमात्मा पिता के साथ लगाना है, और उस परमात्मा पिता के साथ जब हम लगाते हैं तो हमारे अंदर जो शक्तियों की जागृति होती है, वो दिव्य शक्तियों का प्रभाव होता है, और उन दिव्य शक्तियों के आधार से हम अपने मनोविकारों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, और मनोविकारों पर कंट्रोल करने से ही हमारी आध्यात्मिक शक्ति जागृत होने से हमारे मन पर उसका और शरीर पर दोनों पर एक सुंदर प्रभाव पड़ता है, और इसी प्रभाव के अगर बढ़ते जाता है या हम इसको सार्वजनिक रूप से लेते हैं तो हमारे सार्वजनिक जो हम स्वास्थ्य की बात करते हैं वो बहुत सुंदर हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया। अनुरोध है राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी चंद्रिका बहन जी, आप डायरेक्टर हैं सब जोनल अहमदाबाद की, उसके साथ ही साथ ब्रह्मा कुमारी के राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की यूथ विंग की आप वाइस चेयरपर्सन हैं। अपने इंस्पिरेशंस हम सभी के समक्ष रखेंगी।
ओम शांति। आज के कार्यशाला के विषय के संबंध में बहुत ही निष्णातों के विचार सुने। सुप्रीम हीलर समय की आवश्यकता को समझते हुए हम सभी के दिलों दिमाग को हील करने के लिए जब हम सबके बीच में उपस्थित हैं तो हमें पॉजिटिव अप्रोच की ओर जाना होगा, और तीन चार बातें मैं कहूंगी जो आप हर एक अपने साथ ले जाएंगे। सारी बीमारियों का कारण है मनुष्य किसी न किसी बात से, व्यक्ति से, स्वयं से हर्ट होता है। वो हर्ट को अपने दिल में होल्ड करके रखता है, और जिसके कारण बहुत सारी नेगेटिविटी को जन्म मिलता है। हम अपने पर दया करें, हम अपने आप को क्षमा करें, पॉजिटिव एटीट्यूड को अपना करके हम अपने जीवन के अंदर जो बहुत कुछ अच्छा हुआ है उसको याद करें, और आई हुई परीक्षा से मैंने कुछ अनुभव पाया है, ये पॉजिटिविटी के साथ खुद को क्षमा करें और खुद दूसरों को क्षमा करना सीखे। तो हमें पहला काम ये करना होगा, मैं अपने आप को क्षमा करूं और दूसरों को मैं क्षमा दूं। क्या हम क्षमा अपने को कर सकते हैं और दूसरों को क्षमा दे सकते हैं? तो जरा हाथ ऊपर करें। आप आज यहां से हम ये संकल्प लेके जाते हैं। दूसरी बात, हम दूसरों को देख करके, दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करके अपने इंपॉर्टेंस को कम नहीं करें, लेकिन इस सत्य को समझे कि इस संसार के अंदर मैं यूनिक हूं, मेरे जैसा व्यक्ति संसार में पहले था नहीं, आज है नहीं, कल होने वाला नहीं है। तो अपनी यूनिकनेस को याद रखें और हमेशा स्वयं को एक परमात्मा की अमानत समझे। तो दूसरा, आप सभी आज से ये याद करेंगे, मैं यूनिक हूं। याद करेंगे, मैं यूनिक हूं। तीसरी बात, जैसे हम हर दिन खाना खाते हैं, स्नान करते हैं, वैसे हर दिन हमें अपने आप को मोटिवेट करना है। मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मैं बहुत कैपेबल हूँ। अगर मैं अपने आप को मोटिवेट करूँगी तो हर दिन मेरी प्रगति होती जाएगी, और मैं स्वयं को तो मोटिवेट करूँ पर मैं दूसरों को भी मोटिवेट करूँगी तो मैं एक अच्छी से अच्छी हीलर बन पाऊंगी। क्या आप अपने आप को मोटिवेट करके औरों को भी मोटिवेट करने का पुण्य कर सकते हैं? तो हाथ उठाएं। बहुत अच्छा। और आखिरी बात, शुभ भावना, गुड फीलिंग, बेस्ट विशेष, ब्लेसिंग्स। कहते हैं कर भला तो होगा भला। आप सबके प्रति दिल से ये भावनाएं देते जाओ, आपका भला होगा, आपका अच्छा होगा, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, आपकी बहुत प्रगति होगी, ऐसी शुभकामनाएं करते जाओ। आप संसार के एक बेस्ट हीलर बन सकेंगे और आप दूसरों को हील कर सकेंगे। आप पाएंगे अपने आप के अंदर कितने मिरेकल्स है, कितनी ताकत है, कितना मैजिक हमारे अंदर भरा हुआ है। हम बस प्रैक्टिकल अप्रोच की ओर जाएं, स्वयं को हील करें, दूसरों को भी हील करें। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मंच पर उपस्थित हमारे माननीय अतिथि डॉक्टर पुण्य प्रसाद रेग्मी, वाइस चांसलर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नेपाल, डॉक्टर वैमुरी कृष्णा, डॉक्टर इटिकॉन वाटना थाईलैंड, and Professor Brother K.S. Rangappa, scientist and former Vice-Chancellor, Mysore University ka samman shawl pehna karke, momento de karke, aur prasad diya jayega. Iske saath hi saath, Brata Fandendra Gately, founder of Revati Engineering Private Limited, Hyderabad, and Mrs. रेवती गेटली भी कृपया मंच पर आए, आपका भी सम्मान होगा और साथ साथ मोमेंटो भी आपको प्रेजेंट किया जाएगा। इसके साथ ही मैं भ्राता डॉक्टर बनारसी भाई से अनुरोध करती हूँ, आप हमारे आए हुए माननीय अतिथियों का आभार का भार वहन कीजिए और उसके पश्चात अंत में एक बहुत सुंदर डांस है भरतनाट्यम डॉक्टर लता सिंह मुंशी भोपाल कृपया तैयार रहें।
ओम शांति। आप भाग्यशाली आत्माओं को देख करके मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि परमात्म प्रेरणा से निर्मित डायमंड हॉल में आप ईश्वरीय निमंत्रण पर आए हैं और हमारे वक्ता इंटरनेशनल किसका नाम ले और किसका ना ले, आपकी वाणी आपकी अमृत धारा केवल ये आत्माएं नहीं सुन रही है, हॉल के भाई बहने नहीं सुन रहे हैं, सारे विश्व की आत्माएं सुन रही है और प्रेरणा पा रही है। तो ऐसे महान वक्ताओं को हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से हम कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं और आपकी अमृत वाणी के लिए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं और श्रोताओं को भी हम कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ओम शांति, ओम शांति।
डॉक्टर लता सिंह मुंशी भोपाल भरतनाट्यम हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रही हैं। डॉक्टर लता बेन मुंशी कृपया मंच पर आ जाएं। इसके साथ ही साथ हम एक मिनट साइलेंस मेडिटेशन करेंगे और उसके पश्चात भरतनाट्यम बहन डॉक्टर लता सिंह मुंशी भोपाल से अपनी इस कला को प्रदर्शित करेंगी। एक मिनट के लिए हम सभी साइलेंस में बैठेंगे।
कर लो